آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس اردو اور اتوار یکم جنوری کی اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں ریحان الوی۔ سب سے پہلے شہ سرخیاں۔ آسٹریلین حکومت نے چین سے آسٹریلیا آنے والوں کے لیے منفی کووڈ ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا۔ انڈیجینیس وزیر نے مقامی باشندوں کی پارلیمانی باڈی پر ریفرینڈم کی ممکنہ تاریخ کا عندیہ۔ اور ٹینس اسٹار رافیل نادال کی یونائیٹڈ کپ میں ہار کے بعد ان کے ریٹائرمنٹ پر سوالات۔ پوری دنیا میں سال نو کا جشن جوش و خروش سے منایا گیا۔ چین میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث آسٹریلیا کی حکومت نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے منفی کووڈ ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا ہے۔ حکومت کے مطابق 5 جنوری سے چین سے آنے والے مسافروں کو سفر سے 48 گھنٹے پہلے نگیٹو کووڈ ٹیسٹ دکھانا لازمی ہوگا۔ وفاقی وزیر صحت مارک بٹلر کا کہنا تھا کہ چین اور آسٹریلیا کے درمیان مسافروں کی آمد رفت سے عوام کی صحت کو فوری خطرہ نہیں ہے۔
I want to stress again that we warmly welcome as a government the resumption of travel between our two countries. This is going to be a wonderful thing for families who haven't seen friends and relatives for months, if not years, as I said, particularly as we lead into the Lunar New Year period.
پوری دنیا میں نیا سال کا جشن بہتر امیدوں، خوشیوں اور نئی امنگوں کے ساتھ شروع ہوا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں شاندار آتش بازی کے ساتھ 2023 کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں نئے سال کا آغاز ہوا اور جس کے بعد سڈنی ہاربر برج پر لاکھوں افراد نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ مجموعی طور پر نیو ساؤتھ ویلز اور وکٹوریا میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہی، مگر نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے جشن کے دوران 83 افراد کو گرفتار کیا اور 25 پر فرد جرم عائد کی۔ 200 سے زائد ٹریفک اور ریلوے ایمبولینس اس موقع پر عوام کی حفاظت کے لیے موجود تھیں اور پوری ریاست میں تقریباً 2200 کالز وصول کی گئیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں کم تھیں۔ کووڈ کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب سڈنی کے آئیکونک ہاربر برج پر لاکھوں افراد نے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھا۔
This is freedom, no masks, nothing. I know it sounds selfish, but COVID's lurking, but we have to make the best of everything.
وکٹورین پولیس نے سال نو کا جشن منانے والوں کے نظم و ضبط کو سراہا۔
It was such a buzz in Melbourne, which is brilliant to see, you know, nearly 500,000 people here to celebrate. It's been quite a challenging year for so many people and our first year completely out of COVID restrictions.
آسٹریلیا میں اگست کے اوائل میں پارلیمنٹ میں انڈیجینیس وائس نامی مشاورتی باڈی کے قیام پر ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے۔ انڈیجینیس آسٹریلینز لنڈا برنی نے سڈنی مارننگ ہیرالڈ کو بتایا کہ حکومت ریفرینڈم کے انعقاد کے لیے مارچ میں مسودہ قانون پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ فروری کے آخر میں ریفرینڈم کی حمایت میں یس کیمپین شروع ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ قانونی مسودے کو پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا اور اس کی نظر ثانی کے بعد ہی یہ مسودہ مئی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور اس پر اگست میں ریفرینڈم ہو سکتا ہے۔
The people will vote on the principle. Should Indigenous people be guaranteed a fairer say in laws and policies made about them? And in 2023, I know this country is up for it. I know that this country will vote yes.
نئے سال 2023 میں آسٹریلیا کی وفاقی حکومت ادائیگی اور وصولی کی شرح میں تبدیلیاں کر رہی ہے۔ حکومتی اعلان کے مطابق نئے سال کے ویلفیئر پیمنٹ کی رقم میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس مہینے سے یوتھ الاؤنس کی شرح $19.10 سے بڑھا کر $41.40 کی جا رہی ہے، جبکہ سینٹرل لنک پیمنٹ میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ وفاقی حکومت کی عائد کردہ جرمانوں کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ جنرل پرسکرپشنز انڈر دا فارماسیوٹیکل بینیفٹس اسکیم یا PBS کی شرح میں کمی لائی جا رہی ہے، جس سے عمر رسیدہ افراد کو دواؤں کی خریداری پر بچت ہو سکے گی۔ آسٹریلین آرکائیو 2002 کے حالیہ جاری کردہ کابینہ دستاویزات کے مطابق ہاورڈ حکومت نے فرسٹ نیشن کے افراد سے مشاورت کے ریفرینڈم کو مسترد کر دیا تھا، جبکہ مئی 2000 میں ہزاروں افراد نے مقامی ایبوریجنل افراد کے ساتھ یکجہتی کی حمایت میں واک کی تھی۔ کابینہ کے آرکائیو ذخیرے سے سامنے آنے والی دستاویزات کی روشنی میں انڈیجینیس اکیڈمک مارکیا لینگٹن نے حزب اختلاف کے اتحاد کو آسٹریلینز کی رائے کا احترام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
So after 3 fails on the public mood, the marriage equality plebiscite, the Victorian election, and the federal election, one would think that they might go back to the drawing board and come to terms with what modern Australians think.
अब कुछ दीगर खबरें। कैथोलिक चर्च के साबिक सरबरा पॉप बेनेडिक्ट 95 बरस की उम्र में वैटिकन सिटी में इंतकाल कर गए। साबिक पापाए रोम का इंतकाल ऐसे वक्त में हुआ है जब पॉप फ्रांसिस ने अपने पेशरों की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की थी। उन्होंने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल के स्कैंडल में पादरियों के मुलव्वस होने के बहरान का भी सामना किया। उनके इंतकाल पर पॉप फ्रांसिस ने उन्हें एक मेहरबान और मुदब्बिर पेशवा के तौर पर तस्लीम करते हुए खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड सिल्वेस्टर जोसेफ ने साबिक पॉप को एक अजीम रहनुमा करार दिया।
सो सैड न्यूज फॉर द कैथोलिक चर्च एंड फॉर होल वर्ल्ड दैट बिलवर्ड पोप बेनेडिक्ट द 16th हैज पास्ड अवे, बट ही हैज सर्व्ड द चर्च वेरी वेल. 95 year he was working in the church, and as a head of the church he has done a marvelous job for the church.
म्यांमार की एक जनता अदालत ने मारूफ जमहूरियत नवाज रहनुमा आंग सा सूची के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुकम्मल करने के बाद उन्हें मजमुई तौर पर 33 साल की कैद की सजा सुनाई है। 77 साल नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा 2021 में फौज के हाथों अपनी जमहूरी हुकूमत के तख्ता उल्टे जाने के बाद से मुसलसल कैद में है। इस्लामाबाद में अफगान सफारतखाने ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वीज़े की मियाद पूरी होने या सफरी दस्तावेजात ना होने के बायस कराची की जेल में कैद अफगान शहरियों को फौरी रिहा किया जाए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में सैकड़ों अफगान शहरी जेर हिरासत हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बरसर इख्तदार आने के बाद से बड़ी तादाद में अफगान शहरियों ने पाकिस्तान का रुख किया है और मुल्की मईशत की कमजोरी के बायस उनकी देखभाल पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं और इन अफराद की बगैर दस्तावेजात के आमद से मुल्क में जराइम की शरह में भी इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी दारुलहुकूमत में हफ्ते को ही बल्दियाती इंतखाबात कराने के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू न होने पर रद्दमल देते हुए कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात न करवा कर इलेक्शन कमीशन ने साबित किया कि वो मौजूदा हुकूमत की बकौल उनके बी टीम है, जबकि हुकूमत का नुक्ता नज़र है कि इंतजामी सूरतहाल के बायस फ़िलहाल बल्दियाती इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस अज़्म का इजहार किया गया है कि मुल्की मफादात पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। जुमे को वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अलावा दीगर वज़राए मुमलिकत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर अस्करी हुक्काम शरीक हुए। इसी दौरान दारुलहुकूमत में कालादम TTP ने खुदकश धमाके की जिम्मेदारी कबूल की, जबकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते हुए हमलों के नाजर में पूरे मुल्क के साथ वफाकी दारुलहुकूमत में भी नया सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को खैरबाद कहने वाले 37 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब का अल नसर फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया है। पुर्तगाली खिलाड़ी को एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 1,75,000,000 यूरोज अदा किए जाएंगे, जो किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी खिलाड़ी का सबसे ज्यादा मुआवजे का मुहैदा है। ब्राज़ील में फुटबॉल के मुमताज खिलाड़ी पेले, जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीतने में अपनी टीम की क़यादत की और गोल स्कोर करने वाले 9 उम्र खिलाड़ी की हैसियत से शोहरत का आगाज़ किया, जुमेरात को इंतकाल कर गए। पेले की उम्र 82 साल थी। टेनिस स्टार राफेल नदाल को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले यूनाइटेड कप में सनीचर को कैमरॉन नॉरी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। शिकस्त के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि जिस वक्त वो रिटायरमेंट का फैसला करेंगे तो सबसे पहले मीडिया को आगाह करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स 8 विकेटों के नुकसान पर 311 रन पर डिक्लेयर करके न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 138 रन का हदफ दिया था, मगर एम्पायर्स ने कम रोशनी के बायस जल्द मैच खत्म करने का ऐलान किया, जिसके बायस ये मैच बगैर हार जीत के फैसले के खत्म हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज की मेज़बानी के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने गौर खौस शुरू कर दिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान 2007 के बाद से अब तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली गई। और अब मौसम। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में पीर 2 जनवरी को मौसम का हाल इस तरह रहेगा। पर्थ में दर्ज हरारत 16 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, एडिलेड में 19 और 31, मेलबर्न में बारिश का इम्कान, दर्ज हरारत 24 और 32 डिग्री सेंटीग्रेड, होबार्ट में भी बारिश, दर्ज हरारत 18 और 28, कैनबरा में बारिश, दर्ज हरारत 14 और 29 डिग्री सेंटीग्रेड, सिडनी में 19 और 28, ब्रिस्बेन में 19 और 29, जबकि डार्विन में बारिश के साथ दर्ज हरारत 25 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। पाकिस्तानी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में दर्ज हरारत 5 डिग्री, जबकि कराची में 11, लाहौर में 7, पिशावर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेटा में -4 डिग्री, जबकि भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में दर्ज हरारत 6 डिग्री रहने की तवक्को है। यहीं पर खबरें खत्म हुईं।